पृष्ठ संख्या 169। फारसी एवं हिंदी सूफी कवि तथा वजूदिया मत। वजूदिया मत से प्रभावित होकर फारसी और हिंदी सूफी कवियों ने हमा उस्त, वही सब कुछ है, या वहदतुल वजूद का उल्लेख किया है। हम उस्त का विषय सुल्तान अबू सईद अबुल खैर का विशेष विषय है। वे कहते हैं, दर आलम अगर फलक अगर माहो खुरस्त, अस बादा ए हस्ती ए तू पैमाना खुरस्त, फारिग जे जहाने ओ जहां गेरे तू नेस्त, वेरू जे मकाने ओ मका अस्तु पुरस्त। एक, अर्थात संसार में चाहे आकाश हो या सूर्य या चंद्रमा, सब तेरे ही अमर अस्तित्व की मदिरा का पान कर रहे हैं। तू समस्त संसार से पृथक है और संसार तेरे अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है। तू मकान से बाहर है परंतु मकान तुझसे पुर है। तू ही सब कुछ है और सर्वत्र वर्तमान है। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर एक अन्य रुबाई में लिखते हैं, ए बर सरे हरफे इओ आ नाजदा खत, पिंदार दुई दलीले बोदास्त व खत, दर जुमला कायनात वे सहवो गलत, यक एन फहसब दा ओ यक जात फकत। दो, अर्थात ए वह पुरुष जिसने इस और उस पर अब तक रेखा नहीं खींची, तू समझ ले कि दुई इस बात का प्रमाण है कि तू सरल एवं सीधी रेखा एकमात्र प्रभु से दूर है। समस्त सृष्टि में निस्संदेह एक ही हकीकत और एक ही जात है और बस। वे एक और रुबाई में लिखते हैं, गुफ्तम की कराई तू बदी जेबाई, गुफ्ता खुदरा की मन खुदम यक्ताई। एक, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 91 पृष्ठ 43। दो, वही रुबाई 230 पृष्ठ 79 पृष्ठ संख्या 170। हम इश्कमो हम आशिको हम माशुकम, हम आईना हम जमाल हम बीनाई। एक, अर्थात मैंने प्रियतम से पूछा कि तू इस सच धज सहित किसके लिए है। उसने उत्तर दिया कि मैं अपने ही लिए हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय एवं बेजोड़ हूँ। मैं स्वयं ही प्रेम हूँ, स्वयं ही प्रेमी हूँ और स्वयं ही प्रिय हूँ। मैं स्वयं ही दर्पण हूँ, स्वयं ही सौंदर्य हूँ और स्वयं ही दृष्टि हूँ। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर की निम्न पंक्ति इस प्रसंग में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, खुद शाहिदो खुद आईना अजब अस्त। दो, अर्थात प्रभु का स्वयं ही शाहिद देखने वाला और स्वयं ही आईना दर्पण होना अद्भुत है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार इस संबंध में लिखते हैं, चू हमा बर हेच बाशद अज यके, ई हमा पस हेच बाशद बेशके। तीन, अर्थात वह प्रभु एकमात्र होते हुए भी समस्त वस्तुओं पर छाया हुआ है। निस्संदेह वह एकमात्र होते हुए उत्तम है, सर्वस्व है। परम तत्व संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, सारे नाम रूपात्मक जगत में उसका प्रसार है। वह एक परमात्मा प्रत्येक आत्मा में रम रहा है। जा निहा दर जिस्म तू जा दर निहा, ए निहा अंदर जहां ए जा निजा। चार, अर्थात आत्मा शरीर में अंतर्निहित है। हे परमात्मा, तू प्रत्येक आत्मा में निहित है, इस प्रकार तू समस्त संसार में पूर्ण रूपेण रम रहा है। एक, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 453 पृष्ठ 130। दो, वही रुबाई 30 पृष्ठ 26। तीन, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर पृष्ठ 5। चार, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तैर पृष्ठ 5 पृष्ठ संख्या 171। उर्फी साधक को उक्त रहस्य पाने के लिए इस प्रकार कहते हैं, निशाने जा हमी जूता निशा अजबे निशायाबी। एक, अर्थात तू अपनी आत्मा को पहचान ले ताकि तुझे अलक्ष्य प्रभु की खोज मिल सके। हिंदी साहित्य के सूफी कवियों ने भी उपर्युक्त भावनाओं को व्यक्त किया है। संसार में वही एक है, कोई दूसरा नहीं। जायसी कहते हैं, एक से दूसर नाही बाहर भीतर बूझ ले, खांडा दुई न समाही मोहम्मद एक मियान मह। दो, मंझन ने मधुमालती में इसी भाव को प्रकट करते हुए हमा उस्त वही सब कुछ है का पोषण किया है और तौहीद अथवा केवलत्व की भावना का समर्थन किया है। गुपुत रहे परगट जग बेरसे, सर्व व्यापक सोई, दूजा कोई न आहे और भवा नहीं होई। तीन, कवि नूर मोहम्मद ने भी अपनी कृति इंद्रावती में उक्त भावों को लिखा है। उनके अनुसार भी परमात्मा सबका मूल स्रोत है, केवल वही सर्वस्व है। वह परम तत्व गुप्त एवं प्रकट रूप में सर्वत्र व्याप्त है, वही आदि है और अंत है। धन्य आप जग सृजनहारा, जिन बिन खम्भ आकाश संवारा। दो जग को आपो ही राजा, राज दो जग को तही छाजा। आप गुपुत ओ परगट, आप आद ओ अंत, आप सुने ओ देखे कीन मनुष्य बुधवंत। चार, एक, कसायदे उर्फी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1928 ईस्वी, पृष्ठ 77। दो, जायसी ग्रंथावली अखरावट, पृष्ठ 335। तीन, मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद, पृष्ठ 6। चार, नूर मोहम्मद इंद्रावती, पृष्ठ 1। वह परम तत्व जीवों वस्तुओं तथा कार्यकलापों में अंतर्निहित है, वह एक ही अनेकत्व के रूप में व्यक्त हो रहा है। जैसी निम्न पंक्तियों में पृष्ठ संख्या 172, पद्मावती को ईश्वर का प्रतीक मानते हैं और इसी दृष्टि से उसमें सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता का आरोप करके सारे संसार को उसकी बिरौनियों से बिंधा देखते हैं। उन आनन असको जो न मारा, बेधि रहा सगरव संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वह सब बान ओहि के हने। धरती बान बेधि सब राखी, साखी ढाड़ देख देहि सब साखी। रोव रोव मानुष तन ठाड़े, सूत ही सूत वेद अस गाढ़े। बरुणी बान अस ओपह, बेधे रन बन ढाख। सौजहि तन सब रोवा, पंखी ही तन सब पाख। एक, अतः समूची संस्कृति में वह परम तत्व परिव्याप्त है। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर के उक्त कथनानुसार वही प्रेम है, वही प्रेमी है और वही प्रिय है। इसी प्रकार मंझन मधुमालती में लिखते हैं कि वही एक रूप है जो पूर्ण रूप से विश्व में रम रहा है। वही एक रूप संपूर्ण जल थल में अनेक भावों से व्याप्त है। यह रूप प्रकट सब रूपा, यह रूप जो भाव अनूपा। यह रूप सब नैननी ज्योति, यह रूप सब सायर मोती। यह रूप सब फूलन बासा, यह रूप सब भोग विलासा। यह रूप ससिहर असूरा, यह रूप जगपूरी अपूरा। यह रूप अंत आदि निदाना, कै बिरुला जन काहु न जाना। यह रूप जल थल अमहियर, भाव अनेक देखाओ। आपु अपान जो देखे, सो कुछ देखे पाओ। दो, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती के फुलवारी खंड में इन्हीं भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। आपु ही माली आपु ही फूला, आपु ही भंवर फूल पर भूला। आपु ही रूपवंत सो होई, प्रेमी होई रिझत है सोई। आपु ही परगट गुपुत अकेला, गुरु होई कहूं कहूं होई चेला। तीन, एक, जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 43। दो, मंझन कृत मधुमालती वाराणसी पृष्ठ 38। तीन, नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 54। पृष्ठ संख्या 173। जायसी में भी इस सर्वात्मवाद की कमी नहीं। अखरावट में जायसी लिखते हैं, सबे जगत दर्पण कै लेखा, आपु ही दर्पण आपु ही देखा। एक, अन्य उदाहरण देखिए, आपु ही फल आपु ही रखवारा, आपु ही सो रस चाखन हारा। दो, एक और उदाहरण उल्लेखनीय है, आपु ही कागद आपु मसी, आपु ही लेखन हार। आपु ही लिखनी आखर, आपु ही पंडित अपार। तीन, भिन्न भिन्न प्राणियों में वर्ण वर्ण के कलेवर धारण किए वही क्रीड़ा कर रहा है। मूलतः जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। नूर मोहम्मद कहते हैं कि वही परम तत्व दाता कर्ता दृष्टा श्रोता एवं वक्ता है। आपु ही दाता कर्ता होई, दृष्टा श्रोता वक्ता सोई। चार, इस विवेचन के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुरान का यह सिद्धांत कि केवल एक ही ईश्वर है, सूफियों के हाथ में आकर इस प्रकार बन गया कि केवल ईश्वर ही वास्तविक है और कुछ नहीं। अतः वही एक सर्वस्व सर्वत्र एवं सर्वरूप है। इस सारे नाम रूपात्मक जगत में उसका प्रसार है। इस सृष्टि के कण कण में वही एक परम तत्व रम रहा है, वही इस सृष्टि की अंतरात्मा है। रवि शशि उसी परम तत्व के विभिन्न नाम है। रवि शशि नीरज कुमुदिनी नाऊ। पाँच, मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग हैं, प्रत्येक अंग का कार्य जुदा है, रूप जुदा है, परंतु एक आत्मा है जो समस्त अंगों में परिव्याप्त है। एक जैसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 316, दो वही पृष्ठ 316, तीन जैसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 316, चार नूर मोहम्मद इंद्रावती 54, पांच वही पृष्ठ 73, पृष्ठ संख्या 174। अंगों का एक कण भी उस आत्मा से खाली नहीं, फिर भी आत्मा का कोई विशेष स्थान नहीं है, वह हर जगह है और कहीं नहीं। सैकड़ों अंग और हजारों लाखों नसें और नाड़ियां अलग अलग काम कर रही हैं, परंतु वास्तव में वही एक आत्मा सब कुछ कर रही है, वह न हो तो कुछ नहीं, सब मिट्टी का ढेर है। इसी प्रकार समस्त संसार एक विशाल शरीर के समान है, इसके लाखों करोड़ों अंग हैं, सब नाना प्रकार के हैं और भिन्न भिन्न रूप रखते हैं, परंतु वास्तव में इस महान शरीर में भी एक आत्मा है और वही सब कुछ कर रही है। वह एक एक कण में व्याप्त है, वह सर्वत्र है और कहीं नहीं, और फिर सर्वस्व है। यही रूह है जिसको हम खुदा कहते हैं। सरल शब्दों में यही वहदतुल वजूद का अर्थ है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के शब्दों में सूफी केवल यह नहीं कहता कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं, अभी तो उसका सिद्धांत है कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं। दृष्टि विषय तथा चेतना संबंधी संसार केवल मृत तृष्णा है। जल में सूर्य की प्रतिच्छाया मेघ द्वारा पूर्णतया समाप्त हो सकती है, वायु का तीव्र झोंका उसमें विघ्न डाल सकता है, वह पूर्णतया सूर्य पर अवलंबित होता है, किंतु सूर्य किसी प्रकार प्रतिच्छाया के अधीन नहीं। सूर्य का प्रकाश एक है, किंतु दर्पण में, जल में, कण में उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वह कहीं तीव्र हो जाता है, कहीं मध्यम और कहीं इतना तेज हो जाता है कि आंखें चौंधिया जाती हैं। यदि दर्पण, जल या कण नष्ट हो जाए तो प्रकाश को कोई हानि नहीं पहुंचती। समस्त ब्रह्मांड एक शरीर के समान है, उसके लाखों करोड़ों भाग हैं, सभी के रूप भिन्न हैं, किंतु इस बड़े शरीर में भी एक जान है, यही सब कुछ कर रही है, वह कण कण में विद्यमान है, वह प्रत्येक स्थान पर है और कहीं नहीं है, वह निराकार है, वह किसी विशेष दशा में नहीं फिर भी सर्वत्र है। सूफियों का अद्वैतवाद यही है। एक हकायके हिंदी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हिंदी अनुवादक सैयद अतहर अब्बास रिजवी काशी संवत 2014 विक्रम भूमिका पृष्ठ 8। इस सिद्धांत का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर बड़ा गहन तथा गंभीर पड़ता है। मित्र, शत्रु, मोमिन, काफिर किसी में भी उसे अंतर्दृष्टि गोचर पृष्ठ संख्या 175 नहीं होता। पराय प्राणी भी अपने प्रतीत होने लगते हैं। इस सिद्धांत ने हमारे फारसी और हिंदी साहित्य को तो प्रभावित किया ही, इसके साथ ही हमारे दैनिक जीवन पर भी इसका पूर्ण प्रभाव पड़ा है। शेख सादी ने बुस्तान के द्वितीय अध्याय में इब्राहिम तथा एक अग्नि पूजक की कहानी लिखी है। हजरत इब्राहिम ने एक अग्नि पूजक को भोजन पर से इस कारण हटा दिया कि वह अग्नि पूजक था। उस समय ईश्वर की ओर से फरिश्ते ने आकर ईश्वर का यह संदेश सुनाया, मनुष्य दादा सद साल रोजी ओ जा तुरा नफरत आमद अजु यजमा एक, अर्थात मैंने, प्रभु ने उसे अग्नि पूजक को 100 वर्ष तक जीविका तथा जीवन प्रदान किया, परंतु तू क्षण भर भी उसके साथ न रह सका। कवि उर्फी भी अग्नि पूजक के आराधनालय में उसी एक परम तत्व की झलक देखते हैं। एकेश्वरवादी अग्नि पूजक को काफिर कहता है। एकेश्वरवादी को संबोधित करते हुए कवि उर्फी लिखते हैं, शियारे मिलते इस्लामिया बगुजार अगर खाही कि दर दरे मुगा आई ओ असरारे नेहा बीती दो, अर्थात हे एकेश्वरवादी, यदि तू चाहता है कि अग्नि पूजक के आराधनालय में परम तत्व के गुप्त रहस्य पा सके तो तू बाह्याचार को त्याग दे। इस प्रकार जब मैं और तू का भेद नहीं रहता तो मस्जिद, मंदिर, अग्निशाला प्रभृति भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते। मनो तूचू नमादन दरमियाना ते काबा चे कुनिष्टो दैरो खाना एक, अर्थात जब मैं और तू का भेद न रहे तो मंदिर, मस्जिद, अग्निशाला सब समान हैं। एक शेख सादी बुस्तान लंदन सन 1891 ईस्वी अध्याय 2 पृष्ठ 79। दो कवि उर्फी कसायदे उर्फी लखनऊ पृष्ठ 77। तीन महमूद शबिस्त्री गुलशने राज दिल्ली पृष्ठ 28 पृष्ठ संख्या 176। जायसी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ने एक घटना का उल्लेख किया है। उनका नियम था कि जब वे अपने खेतों में होते तब अपना खाना वहीं मंगा लिया करते थे। खाना वे अकेले कभी ना खाते। जो आसपास दिखाई पड़ता उसके साथ बैठकर खाते थे। एक दिन उन्हें इधर उधर कोई न दिखाई पड़ा। बहुत देर तक आसरा देखते देखते अंत में एक कोढ़ी दिखाई पड़ा। जायसी ने बड़े आग्रह से उसे अपने साथ खाने को बिठाया और एक ही बर्तन में उसके साथ भोजन करने लगे। उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था, कुछ थोड़ा सा मवाद भोजन में भी चू पड़ा। जायसी ने उस अंश को खाने के लिए उठाया पर उस कोढ़ी ने हाथ थाम लिया और कहा, उसे मैं खाऊंगा, आप साफ हिस्सा खाइए। पर जायसी झट से उसे खा गए। इसके पीछे वह कोढ़ी अदृश्य हो गया। इस घटना के उपरांत जायसी की मनोवृत्ति ईश्वर की ओर और भी अधिक हो गई। उक्त घटना की ओर संकेत लोग अखरावट के इस सोठा में बताते हैं। बूंदही समुद्र समान यह अचरज का सौ कहो, जो हेरा सो हेरान, मोहम्मद आप ही आप उमह। दो, सैयद अतहर अब्बास रिजवी हकायके हिंदी में लिखते हैं, सनाई ने अपनी प्रसिद्ध फारसी रचना हदीका में एक छंद लिखा है, कुफ्र तथा इस्लाम दोनों उसी के मार्ग की ओर अग्रसर हैं और दोनों ही कहते हैं कि वह एक है और कोई भी उसके राज्य में उसका साझी नहीं। एक, जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ 7। दो, जायसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 308। इस छंद को अबुल फजल मृत्यु 1602 ईस्वी ने एक पूजा गृह पर जो अकबर के समय में कश्मीर में तैयार कराया गया था लिखवाया था। इस स्थान पर सभी धर्म वाले अपने धर्म के अनुसार पूजा कर सकते थे। फारसी के प्रसिद्ध सूफी कवि जामी मृत्यु 1492 ईस्वी के एक छंद का भाव इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 170। हमने कभी तुझे मदिरा के नाम से और कभी प्याले के नाम से पुकारा, कभी दाने के नाम से और कभी जाल के नाम से पुकारा। संसार के पट पर तेरे नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, अब हम तुझे किस नाम से पुकारें। दारा शिकोह मृत्यु 1659 ईस्वी ने भी इसी प्रकार लिखा है, मैंने एक कण भी सूर्य से पृथक नहीं देखा, प्रत्येक जल की बूंद स्वयं ही समुद्र है। एक, कवि उर्फी तसव्वुफ के सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति से कहते हैं, मन अज गुल बाग मी जोयम, तू गुल अज बाग मी जोई, मन आतिश अज दुखा बीनम, तू अज आतिश दुखा बीमी। दो, अर्थात मैं पुष्प में उपवन की खोज करता हूँ और तू है कि उपवन से पुष्प ढूंढता है, मैं धुएं में अग्नि देखता हूँ और तू है कि अग्नि से केवल धुआं ही धुआं देखता है, अर्थात मैं जजूब में कुल देखता हूँ, यह मत भारतीय वेदांत के अधिक निकट है। अंश अंशी भाव की व्यंजना महमूद शबिस्त्री ने भी हृदयग्राही काव्यात्मक ढंग से की है। एक शेर में वे कहते हैं कि जिस प्रकार जल कण सागर का अंश है, उसमें सागर के सभी गुण वर्तमान हैं, उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अगर यक कतरा रा दिल बर्शिगाफी, बरू आयद अज सूद बहरे साफी। तीन, अर्थात यदि तू एक बिंदु के दिल को चीरे तो इसमें से सैकड़ों साफ। एक, हकायके हिंदी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हिंदी अनुवादक सैयद अतहर अब्बास रिजवी काशी संवत 2014 विक्रम भूमिका पृष्ठ 8-9 टिप्पणी 1। दो, कवि उर्फी कसायदे उर्फी लखनऊ पृष्ठ 77। तीन, महमूद शबिस्त्री गुलशन राज दिल्ली पृष्ठ 14। पृष्ठ संख्या 178। समुद्र निकल आएंगे, तात्पर्य यह कि हर कतरा अपने भीतर हकीकत के सागर को लिए हुए है। इस अंश अंशी भाव को महमूद शबिस्त्री निम्न शेरों द्वारा और भी स्पष्ट करते हैं। वहर जुजबे जे खाक अर बिगरी रास्त, हजारा आदम अंदर वह हुए दास्त। एक, अर्थात यदि धूल कण को तू ध्यान पूर्वक देखे तो उसमें सहस्त्रों मनुष्य अभिव्यक्त होंगे। दरु हब्बा सदखिर मन आमद, जहाने दर दिल यक अर्जन आमद। दो, अर्थात एक दाने के भीतर अनेक खलियान वर्तमान हैं और एक चीने में एक संसार समाया हुआ है। तात्पर्य यह कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है, उसमें वही तत्व वर्तमान है जो परम तत्व में है। इसे महमूद शबिस्त्री तफक्कुर कहते हैं। तफक्कुर रफ्तन अज बातिल सुए हक, बजूजब अंदर बदीदन कुले भुतलक। अर्थात तफक्कुर बातिल असत्य से हक सत्य की ओर जाने को कहते हैं, तथा जूजब अंश में कुल अंशी को देखने को कहते हैं। आशय यह कि जीवात्मा में परमात्मा के दर्शन करना तफक्कुर कहलाता है। बूंद और समुद्र के साम्य से ईश्वर और जीव का अंश अंशी भाव बाबा ताहिर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। मुआ बहरम की दर जर्फ आमदस्तम, मुआ नुक्ता की दर हर्फ आमदस्तम। तीन, एक वही पृष्ठ 14, दो वही पृष्ठ 7, तीन रुबाइयाते बाबा ताहिर लाहौर मलिक नज़ीर अहमद 1932 पृष्ठ 1, पृष्ठ संख्या 179। अर्थात मैं वह समुद्र हूँ जो एक पात्र में आ गया हूँ, मैं वह नुक्ता हूँ जो हर्फ में आ गया हूँ। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर की रुबाइयों में कई स्थलों पर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने भी अद्वैत का विवेचन किया है। उपनिषद में नास्ति द्वैत एक ऐसे वाक्य से अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है, यही अबू सईद अबुल खैर की रुबाइयों में ध्वनित होता है। वे जीव और ब्रह्म की अभिन्नता की पुष्टि करते हुए कहते हैं, वह रिस्त वजूदे जावदा मौज जना जा बहर नदीदा गहरे मौज अहले जहां अज बातिने वहरे मौज भी गश्ता आया बर जाहिरे बहरो वहर दर मौज निहा। दो, अर्थात शाश्वत परम सत्ता एक तरंगित सागर है जिसकी संसार के प्राणियों ने केवल तरंग ही देखी है। सागर के भीतर से जलतल पर एक लहर प्रकट हुई और सागर इस लहर में निहित हो गया। अतः वह परम तत्व ही एक निरपेक्ष आधार है जिस पर सापेक्ष संसार की सृष्टि होती है। उस आधार के बिना संसार का अस्तित्व असंभव है। सृष्टि की समस्त वस्तुएं उस सृष्टा की सत्ता के सार हैं। आत्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। यही भाव सुल्तान अबू सईद अबुल खैर के कलम से पुनः इस प्रकार निकला, हस्ती के जुहूर भी कुनद दर हमाशय खाही की बरी बहाल बा हमापे रूबर सरे मैं हबाब राबी की चिसा मैं वे बवद अंदर वे ओ वे दर मैं वे। तीन, एक छांदोग्योपनिषद 6:2:1-2 रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 332 पृष्ठ 100। तीन, रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 416 पृष्ठ 121 पृष्ठ संख्या 180। अर्थात वह परम सत्ता जो समस्त सृष्टि में पर्याप्त है उसके विषय में यदि तू वास्तविकता मालूम करना चाहता है तो मदिरा बुदबुदों को निहार। मदिरा बुदबुद के भीतर है और बुदबुद मदिरा के भीतर। तात्पर्य यह कि मदिरा पर जो बुलबुले उठ खड़े होते हैं वे मदिरा से पृथक प्रतीत होते हैं, परंतु वे उसी मदिरा ही के अंश होते हैं। अतएव सूफी कवि सुल्तान अबू सईद अबुल खैर बुदबुद एवं मदिरा के साम्य से जीव तथा परम तत्व का अंश अंशी भाव सिद्ध करते हैं। परंतु बुदबुद और शराब का उदाहरण कुछ दोषणीय है, क्योंकि बुलबुले में केवल शराब नहीं अपितु वायु भी है। अतः एक अन्य सूफी कवि ने इस दोष को भी दूर कर दिया, बा वहदते हक जे कसरते हल्क चे बाक सद जाए अगर गिरह जमनी रिश्ता यकीस्त। एक, धागे में जो गिरहें लगा दी जाती हैं यद्यपि उनका रूप धागे से भिन्न है तथापि वस्तुतः धागे के अतिरिक्त गिरहें कोई अन्य चीजें नहीं केवल रूप परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार यह सृष्टि भी उसी एक परम तत्व का स्वरूप है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार एवं मौलाना रूम ने अपनी रचनाओं में अद्वैतवाद का विस्तार से प्रतिपादन किया है। अत्तार वादिय तौहीद के प्रसंग में कहते हैं, चूं बसे बाशद यक अंदर यक मुदाम आ यके दर यक यके बाशद तमाम। दो, अर्थात अनेक वस्तुएं उस एक से निर्मित हुई हैं और समस्त अंक एक के अंक से बने हैं। एक, क मौलाना शिबली सवानेह मौलवी रूम अमृतसर पृष्ठ 179-80। ख खलीक अहमद निजामी तारीखे मशायखे चिश्त दिल्ली सन 1953 पृष्ठ 112। दो, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार मंती कुत्तैर लखनऊ पृष्ठ 248। इसके स्पष्टीकरण के लिए मौलाना शिबली के निम्न वाक्य उपयोगी सिद्ध होंगे, पृष्ठ संख्या 181। एदाद जिस कद्र है इकाइयों के मजमुआ का नाम है, मसलन 10 चंद इकाइयों के मजमुआ का नाम है लेकिन इकाई और 10 में कोई फर्क नहीं, यानी कोई नई चीज इस इकाई में शामिल नहीं हुई बल्कि इकाई को 10 दफा शुमार किया तो 10 बन गया। इसी तरह तमाम आलम जाते वाहिद है, मरतबा एक कसरत में सुख्तलिफ और मुतअद्दिद मालूम होता है। ई महज बहदत अस्त ब तकरार आमदा। एक, बूंदही समुद्र समान को मौलाना रूम ने अपनी मसनवी एवं अन्य रचनाओं में अनेक तर्कों, कथाओं एवं उदाहरणों द्वारा परिपुष्ट किया है। उनकी निम्न पंक्तियों में यही सिद्धांत प्रतिपादित है। हर किरा बाशद जै सीना फत बाब उजे हर जर्रा व बीनद आफ्ताब दो हक पदीदस्त अज मियाने दीगरा हमचू माह अंदर मियाने अख्तरा तीन अर्थात जिस प्राणी के हृदय का द्वार खुल जाता है वह प्रत्येक कण से सूर्य को देखता है। दूसरों के मध्य परम तत्व इस प्रकार प्रकट हो रहा है जिस प्रकार शशि तारों के मध्य। हिंदी सूफी काव्य में भी अद्वैतवाद की झलक स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। जायसी जुज़ब में कुल निम्न सुप्रसिद्ध सोठा में इस प्रकार देखते हैं। बूंदही समुद्र समान यह अचरज कासों कहो जो हेरा सो हेरान मुहम्मद आप ही आप उमा हो। चार एक मौलाना शिबली शेरुल अजम भाग पाँच लखनऊ सन 1922 ईस्वी पृष्ठ 116। दो मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी ए मौलवी ए मानवी कानपुर पृष्ठ 118। तीन वही पृष्ठ 117। चार जायसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 308। अर्थात यह अजीब बात किससे कहूँ, हाँ हाँ एक ही बूंद में तो सारा सागर समाया हुआ है। आशा यह कि मनुष्य पिंड के भीतर ही ब्रह्म पृष्ठ संख्या 182 समाया हुआ है। अंश में अंशी अंतर निहित है, आत्मा एवं परमात्मा अभिन्न है। जीव और ब्रह्म में वस्तुतः कोई भेद नहीं, जीव ब्रह्म ही का अंश है। जैसे अखरावट में कहते हैं, रहा जो एक जल गुपुत समुंदा बरसा सहस 18 बूंदा सोई अंश घटे घट मेला ओ सोई बरन बरन होई खेला। एक मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है। सूफी कवि अंश अंशी भाव को बूंद और समुद्र की उपमा देकर प्रमाणित करते हैं। कवि उस्मान लिखते हैं कि यथा समुद्र में लहरें उठती हैं परंतु वे समुद्र से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार यह जगत भी उसी परम तत्व से उत्पन्न हुआ है और उससे भिन्न नहीं है। इस अभिन्नता को वे इस प्रकार लिखते हैं, सब वही भीतर वह सब माही सबै आपु दूसर कोई नाही दूसर जगत नाम जिन पावा जैसे लहरी उदधि कहावा ज्ञान नैन जो देखे कोई बारिद बिना आन नहीं होई। दो उर्दू के सुविख्यात कवि गालिब जलबिंदु एवं नदी का दृष्टांत देकर अंश अंशी भाव को सुस्पष्ट करते हुए कहते हैं, कतरा में दजला दिखाई न दे और जुजब में कुल खेल लड़कों का हुआ दीदा ए बीना न हुआ। तीन दजला एक नदी का नाम है जो बगदाद के नीचे से निकल गई है। लाक्षणिक रूप में हर एक नदी को दजला कहते हैं। भाव यह कि दीदा ए बीना बच्चों का खेल नहीं है कि उसे जलबिंदु में नदी और जुज्ब में कुल दिखाई न दे। अतः सिद्ध सूफी को अवश्य ही अंश में अंशी दृष्टिगोचर होता है। अंश अंशी भाव के प्रतिपादनार्थ किरण तथा सूर्य की उपमा कासिम शाह इस प्रकार देते हैं, एक वही पृष्ठ 305, दो उस्मान चित्रावली पृष्ठ 2, तीन दीवाने गालिब संपादक आसी लखनऊ पृष्ठ 54, पृष्ठ संख्या 183। जग में छाई किरण सब ज्योति मांझ कैलाश तपसी थकित जगत के बैठ सोते ही की आस। एक उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सूफी कवि अद्वैतवाद के अंतर्गत एक ओर आत्मा और परमात्मा के द्वैत त्याग को लेते हैं और दूसरी ओर जड़ जगत और परमात्मा की एकता प्रदर्शित करते हैं। फारसी के सूफियों के प्रसिद्ध उदाहरण के अनुसार यदि धागे में गांठें लगी हों तो धागे और गांठ में कोई अंतर नहीं, केवल रूप परिवर्तन है। इसी प्रकार यह सब कुछ उसी एक परम तत्व ही का रूप है। कवि मंझन के शब्दों में, त्रिभुवन चहुजुग एक अकेला आपु अपान रूप में खेला अलख निरंजन करता एक रूप बहु भेष कतहु बाल भिकारी कतहु आदि नरेश। दो अतः यह जीव और जगत उसी एक परम तत्व की बाह्य अभिव्यक्ति है, उसी एक ही का भिन्न रूपों में आभास है। जो सूफी इस तथ्य से अवगत हो जाता है और मैं ते तय में ए द्वय नाही को समझ जाता है वह अनहलक पुकार उठता है। सिद्ध सूफी हुसैन इब्न मंसूर का नाम इस संबंध में चिरस्मरणीय रहेगा। वे प्रभु प्रेम सागर में इतने निमग्न हुए कि अपने आप को भुला बैठे। अपने भीतर और बाहर उन्हें अल्लाह की जात दृष्टिगोचर होने लगी और वे अनहलक मैं हक हूँ पुकार उठे, मैं और तू में कोई भेद नहीं रहा। मन तू शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जा सुदी त काकस न गोयद बाद अजी मन दी गरम तू दी गरी। 3 अर्थात मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं शरीर हो गया, तू आत्मा हो गया, ताकि फिर कोई भी यह ना कहे कि मैं अन्य हूँ और तू अन्य। 1 कासिम शाह हंस जवाहिर पृष्ठ 50। 2 मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद पृष्ठ 5। 3 रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर संपादक मौलवी मोहम्मदुल हसन लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श पृष्ठ 17। पृष्ठ संख्या 184। मंसूर के संबंध में सुल्तान अबू सईद अबुल खैर इस प्रकार लिखते हैं, मंसूर हल्लाज आ नहंगे दर्या कज पंबा ए तन दाना ए जा कर दुदा रोजे की अनहलक ब जमामी आवर्द मंसूर कुजा बुध खुदा बुध खुदा। 1 अर्थात तसव्वुफ के सागर के मकर मंसूर हल्लाज जो शरीर की रूई से आत्मा के बिनौले पृथक कर चुके थे ने जिस दिन अलहलक की रट लगाई उस दिन मंसूर कहाँ था, खुदा ही खुदा था। इसी प्रकार महमूद शबिस्त्री ने लिखा है, रवा बाशद अनलहक अज दरख्ते चरा न बवद रजा अज नेक वख्ते। 2 उपर्युक्त शेर से संबंधित कथा इस प्रकार है कि यहूदियों के पैगंबर मूसा को पर्वत तूर पर एक हरे भरे वृक्ष पर प्रकाश दृष्टिगत हुआ, उसे देखकर वे चकित रह गए। वे उसकी ओर गए तो आवाज आई, ए मूसा मैं तेरा रब हूँ। कवि के विचारानुसार मूसा ने वृक्ष पर जो प्रकाश देखा था वह खुदा न था, अपितु वृक्ष ही से अनहलक की आवाज आई थी। जब वृक्ष खुदा के आलोक से आलोकित होकर खुदाई का दावा कर सकता है तो मानव जो परमात्मा के गुण आदि का द्योतक होने के कारण भाग्यशाली है, अनहलक के दावे से क्यों कर वंचित रह सकता है। 1 रुबाइयाते अबू सईद अबुल खैर संपादक मौलवी महमूदुल हसन लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श पृष्ठ 17। 2 गुलशन राज अनुवादक मौलवी अहमद हसन दिल्ली भूमिका पृष्ठ 2। 3 जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ 146। परंतु मनुष्य को सर्वप्रथम तू मैं तू एक हैं और न दूजा कोई, ऐसा सम्यक समझना अनिवार्य है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में इस अद्वैतवाद के मार्ग में बाधक होता है अहंकार। यह अहंकार यदि छूट जाए तो इस पृष्ठ संख्या 185 ज्ञान का उदय हो जाए कि सब मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ नहीं है। 1 जायसी लिखते हैं, हाँ हाँ कहत सबै मति खोई जो तू ना ही आही सब कोई, आपो ही गुरु सो आपो ही चेला आपो ही सब ओ आपो अकेला। 2 अखरावट में जायसी ने लिखा है कि सोहम इस तत्व की अनुभूति ही से पूर्ण शांति की प्राप्ति है। सोहम सोहम बसी जो करई जो बुझे सो धीरज धीरई। 3 ऊपरी लिखित विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से फारसी एवं हिंदी के सूफी कवि अद्वैतवादी हैं, परंतु साधनात्मक दृष्टिकोण से वे विशिष्टाद्वैतवादियों के अधिक निकट हैं। वे आप प्रेमी होते हैं और उनका प्रेम परम तत्व के प्रति होता है। वे परम तत्व को अपने रागात्मक हृदय का आलंबन बनाकर उसके साथ व्यक्तिगत प्रेम संबंध स्थापित करते हैं। वह प्रभु के सौंदर्य पर रीझते हैं, सृष्टि के समस्त सौंदर्य में उसी परम प्रियतम का आभास देखते हैं। ब्रह्म की भावना भी वे जमाल और जलाल इन दो रूपों में करते हैं। जमाल में कल्पना करने वाले जमाली केवल ईश्वर की सुंदरता ही को देखते हैं और जलाल रूप में कल्पना करने वाले जलाली उसके ऐश्वर्य शक्ति और शील को। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मतानुसार हिंदी के सूफी कवि जायसी कुतबन मंझन आदि पहले वर्ग के ही हैं। 4 परंतु किसी भी कवि को एक वर्ग से पूर्ण रूपेण संबंधित कर देना समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि फारसी और हिंदी कवियों ने उक्त दोनों रूपों का उल्लेख किया है, पहले का कम और दूसरे का अधिक। 1 जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ 146। 2 वही पद्मावत पृष्ठ 93। 3 जायसी ग्रंथावली अखरावट पृष्ठ 338। 4 पंडित विश्वनाथ प्रसाद वाङ्मय विमर्श तृतीय संस्करण पृष्ठ 225। फारसी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित सूफी कवि सरमद ईश्वर को अनंत सौंदर्यशाली और अपने आप को उसका प्रेमी लिखते हैं, पृष्ठ संख्या 186। मशहूर शुदी ब दिल रुबाई हमाजा बेमिसल शुदी दर आशनाई हमाजा मन आशिके ही तौरे तवाम मी बीनम खुदरान अनुमाई ओ नुमाई हमाजा। 1 अर्थात हे परम प्रियतम, तेरी सुंदरता एवं मनोहरता सर्वत्र प्रसिद्ध है। तेरी प्रेम प्रीति की प्रतिष्ठा भी सर्वत्र अद्वितीय है। मैं तेरे रूप का अनन्य भक्त एवं प्रेमी हूँ, तो अपने आप को न दर्शाते हुए भी सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। जमाल रूप का एक अन्य उदाहरण देखिए। कर दी तू अलम बदिल रुपाई खुदरा, हमदर फनो मेहर आशनाई खुदरा, ई दीदा की बिनास्त तमाशाई ए तुस्त, हर लहजा बसद रंग नुमाई खुदरा। दो, अर्थात तूने क्या क्या सौंदर्य नहीं दिखाया, तूने क्या क्या प्रेम प्रकट नहीं किया। ज्ञान चक्षु तुझे कण कण में व्याप्त देख सकते हैं। तू प्रत्येक पल अपने आप को नाना प्रकार से दर्शा रहा है। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर ईश्वर के जलाल रूप की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, ए खालिके जुल जलाला हके रहमा, साजिदा ए कारहाए बेसामाना, खसमाने मरा मुती मन भी गंदा, बेरहमा रा रहीमे मन भी गदा। तीन, एक, ए सरमद रुबाइयाते सरमद दिल्ली शाहजहानी प्रेस रुबाई 6 पृष्ठ 18। दो, वही रुबाई 9 पृष्ठ 19। तीन, रुबाई आते अबू सईद अबुल खैर लाहौर शेख जान मोहम्मद अल्लाह बख्श रुबाई 343 पृष्ठ 103। अर्थात हे जलाल वाले प्रतापवान श्रष्टा दयालु निर्धनों एवं असहायों पृष्ठ संख्या 187 के काम आने वाले, तू मेरे शत्रुओं को मेरे वशीभूत कर दे और निशंसों को मुझ पर दया करने वाला बना दे। सुल्तान अबू सईद अबुल खैर की निम्न रुबाई की पहली दो पंक्तियों में जलाल रूप और शेष दो पंक्तियों में जमाल रूप की झलक है। ए सब्जी ए सब्जा ए बहारा अस्तु, वह सुर्खी ए रुए गुल इजारा अस्तु, आहे दिलो अश्के बेकरारा अस्तु, फरियाद की बाद अस्तु व बारा अस्तु। एक, ईश्वर के जलाल रूप के संबंध में कवि कहता है कि हे ईश्वर, बहार की हरियाली का हरा भरा पता तेरी जात से है और गुलाब जैसे मुखमंडल रखने वालों की लालिमा तेरी जात से है। आगे जमाल रूप के विषय में कवि लिखता है कि हृदय के उच्छ्वास और अधीरों के नीर तेरी ही जात से हैं। खेदजनक बात यह है कि आंधी भी तेरी जात से है और वर्षा भी तेरी जात से है। यहूदियों के पैगंबर हजरत मूसा ने तूर पर्वत के वृक्ष पर जो ईश्वर का रूप देखा था वह जमाल था, क्योंकि मूसा उसका दर्शन करके अचेत हो गए थे। हिंदी के सूफी कवियों ने भी ईश्वर में असीम सौंदर्य माना है, इसीलिए वह प्रेम का पात्र है। वह स्वयं प्रेम रूप भी है। पद्मावती के रूप की चर्चा करते हुए सूर्य से भी अधिक उसके सौंदर्य की व्यंजना की गई है। सूरज किरण जैसे निर्मल तेहिते अधिक शरीर। दो, उस एक का सौंदर्य ही इस संपूर्ण संसार की सुंदर वस्तुओं में आभासित है। जैसी उसके जलाल रूप का पुनः वर्णन करते हुए लिखते हैं, रवि शशि नखत दीप ही ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। एक, वही रुबाई 373 पृष्ठ 110। दो, जैसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 209 पृष्ठ संख्या 188 तथा नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगर हीर। एक, जायसी उसके जमाल रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें अनंत शक्ति है। वह पर्वत सदृश विशाल वस्तु को भी राई के समान छोटा बना सकता है, साथ ही चींटी के सदृश तुच्छ जीव को हाथी की समता के योग्य बना सकता है, वज्र के समान कठोर अस्त्र को एक तुच्छ तिनके से उड़ा सकता है और साधारण से तिनके को वज्र के गुण देकर वज्र की महत्ता प्रदान कर सकता है। उस सर्वशक्तिमान प्रभु की कृति को समझने में कौन समर्थ है। वह जो कुछ करता है कभी स्वप्न में भी हमारे विचार में नहीं आ सकता। किसी के लिए तो उसने अमित भोग सुख ऐश्वर्य की सामग्री उत्पन्न की है और किसी को पेट भर अन्न भी नहीं मिलता है। इस रहस्य ग्रंथि को खोलना बहुत कठिन है। वह किसी को बनाता है तो किसी को बिगाड़ता है और यदि चाहता है तो फिर संवार देता है। पर्वत ढाह देख सब लागू, चाट ही करे हस्ति सरी जोगु, व्रज ही बज्र ही तिन कही मारी उड़ाई, तिन ही बज्र करी देह ही बढ़ाई, ताकर कीन न जाने कोई, करे सोई जो चित न होई, काहु भोग भुगति सुख सारा, काहु बहुत भूख दुख मारा, सबै नास्ति वह अहथिर, ऐसा साज जेहि केर, एक साजे ओ भांजे चहे समारे फेर। दो, उसने जैसा चाहा वैसा किया और जैसा वह करना चाहता है वैसा ही करता है। वह अपने मन का राजा है। उसके कार्यों में कोई भी बाधक नहीं हो सकता। चाहे सृष्टि के समस्त प्राणी भले ही अपने प्राण दे दें, उससे बढ़कर है ही कौन, उसे रोकने वाला कोई नहीं। जो चाहा सो कीन हसी, करे जो चाहे कीन हा, बर्जन हार न कोई, सबै चाही जीव दीन हा। 3.1 वही पृष्ठ 25, 2 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 3, 3 वही पृष्ठ 3, पृष्ठ संख्या 189। जिस प्रकार यहूदियों के पैगंबर मूसा ईश्वर के जमाल को देखकर मूर्छित हो गए थे, उसी प्रकार पद्मावत में पद्मावती रूप प्रभु के दर्शन करके राघव चेतन एवं अलाउद्दीन मूर्छित हो जाते हैं। हिंदी सूफी काव्य में ऐसे कई उदाहरण हैं। कवि जायसी द्वारा प्रस्तुत जमाल का एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है। चांद सूरज और नखतन पाती, तेरे डर धावही दिन राती, पानी पवन अगिन और माटी, सबके पीठ तौरी है सांटी। 1 इस प्रकार अन्य हिंदी सूफी ग्रंथों में ईश्वर के जलाल और जमाल दोनों रूप परिलक्षित होते हैं। हिंदी सूफी कवि सूर्य चंद्र नक्षत्र सभी में अनंत सौंदर्यशाली प्रभु की झलक देखते हैं। उषा की शुभ्रता और सांध्य वेला की रक्तिमा में उस परम आकर्षक प्रभु की छवि पाते हैं। अतः परम तत्व को परम सौंदर्य रूप मानते हुए उस पर मुग्ध होकर उससे पावन एवं पवित्र प्रेम करते हैं, जो कि सौंदर्य का प्रेम से अविच्छिन्न एवं अटूट संबंध है और उसी प्रेम स्वरूप प्रभु के चिरस्थायी तथा शाश्वत आनंद में तल्लीन रहते हैं। इस प्रकार जहाँ वे ईश्वर में सौष्ठव और सुंदरता पाते हैं, वहाँ ईश्वर में पारुष्य और सबलता भी पाते हैं। वे उसके रूप दीपक पर शलभ बन जाते हैं। इह रूप सब फूलन बासा, इह रूप रस भंवर बिरासा, इह रूप ससिहर असूरा, इह रूप जगपूरी अपूरा। 2 तथा है वह रूप दीप उजियारा, है पतंग तापर संसारा। 3 अतएव परम तत्व के जलाल और जमाल, कोमल और कठोर दोनों रूप दोनों सूफी काव्यों में उपलब्ध हैं। सूफियों के विचारानुसार प्रेम का आलंबन परम तत्व है और आश्रय जीवात्मा अथवा समस्त प्रकृति है, जो परमात्मा से बिछुड़कर सदैव दुखित व्यथित एवं पीड़ित रहती है। सारी प्रकृति अपने परम प्रियतम से अनादिकाल से वियुक्त है। 1 वही पृष्ठ 180, 2 मंजन कृत मधुमालती इलाहाबाद पृष्ठ 100, 3 नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 79। अतः प्रत्येक क्षण पृष्ठ संख्या 190 अपने प्रियतम के विरह में जल रही है, धधक रही है, रुदन कर रही है। मौलाना रूम की मसनवी के प्रारंभिक दो शेर इसी ओर संकेत करते हैं। बशनो अजनै चू हिकायत मिकुनद, अज जुदाईहा शिकायत भी कुनद, अज नैस्ता ता मरा बबुरीदा अंध, अज नफीरम मर्दोजन नालीदा अंध। 1 भाव यह कि सुन, वियोग से दुखी बांसुरी आत्मा क्या क्या गिला कर रही है और कैसा दिल हिला देने वाला रुदन सुना रही है। वह कहती है कि जब से मुझे अमर वन परमात्मा से जुदा किया है, दुनिया में हाहाकार मच गया है। मेरा हृदय विदारक क्रंदन सुनकर सब खून के आंसू बहा रहे हैं। नूर मोहम्मद ने मौलाना रूम की शैली का अनुसरण करते हुए अपने कृति अनुराग बांसुरी में बांसुरी का उल्लेख आरंभ में किया है, फिर अनुराग बांसुरी बाजी से अभिलाख स्वांत उपराजी। 2 नूर मोहम्मद ने इंद्रावती के जीव कहानी खंड में भी अत्यधिक रोचक ढंग से जीवात्मा के परमात्मा से पृथक होने की कथा कही है। सुनहो मित्र अब जीव कहानी, जो लिखी गई सहचरी ज्ञानी। जीव एक राजा का नाऊ, सो शरीर पुर पाए ठाऊ, रह वह जीव के एक नरेसु, सो दीन्हा जीव को वह देसु, जब ठाकुर सो आयसु पावा, तब जीव राय शरीर रही आवा, साथ ही बहुत साथ बीउ लीन्हा, तब शरीर पुर आवत कीन्हा, आई पाट पर बैठा भा शरीर को राय, देखी नगर की शोभा, रहसा परमद पाए। 3 इस प्रकार प्रथमतः ब्रह्म और प्रकृति एक थे, धरती सरग मिले हुत दो। 4.1 मौलाना रूम मसनवी ए मौलवी ए मानवी प्रारंभिक पंक्तियाँ। 2 नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी प्रारंभिक पंक्तियाँ। 3 नूर मोहम्मद इंद्रावती पृष्ठ 64। 4 जायसी ग्रंथावली पद्मावत पार्वती महेश खंड पृष्ठ 92। पृष्ठ संख्या 191। परंतु उससे विलग होने के पश्चात प्रकृति उससे मिलने के लिए आतुर एवं व्याकुल है। समूचा संसार उसके विरह से प्रपीड़ित है। उसके विरह में चंद्र, सूर्य एवं तारे जल रहे हैं। समुद्र और नदियां विकल हैं और प्रकृति का कण कण महामिलन के लिए ललक रहा है। अशांत है, व्यग्र है। उसमें सर्वत्र प्रेम की पीर, विरह की व्यथा, जलन, दाह और टीस है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी सूफी कवियों के संबंध में लिखा है, विरह का वर्णन करने में ये कवि कमाल करते हैं। ये कथा कथा के लिए नहीं करते, इनका लक्ष्य सदा भगवत प्राप्ति रहता है। इसलिए भगवान के विरह में जीवात्मा की तड़पन का ये बड़ी सजीवता के साथ वर्णन करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, बम्बई, सन 1954 ईस्वी, पृष्ठ 58। हिंदी के सूफी कवियों की भांति फारसी के सूफी कवियों का विरह वर्णन भी अत्यंत मार्मिक है। उसमें परम प्रियतम के मिलन के लिए प्रबल उत्कंठा, परम उत्सुकता, असीम आतुरता, अपार अधीरता, अनंत आकुलता, अपरिमित कातरता और उत्कट प्रतीक्षा सदैव रहती है। विरह की अग्नि में तप कर कुंदन की भांति शुद्ध एवं निर्मल रूप धारण किए हुए अपने पावन एवं पुनीत प्रेम को प्रकट करने में वे पूर्ण रूपेण सिद्ध हस्त हैं। सुलगते हुए तन मन के साथ, आंसुओं के तप्त नीर में रहकर उबलते हुए जीवन के साथ और दुख की मिट्टी में झुलसते हुए अंगों के साथ वे अजर एवं अमर प्रेम पर कलम तोड़ते हैं। व्यथित विरहियों के दुखड़े रोते हैं, प्रपीड़ित प्रेमियों के आंसुओं से हार पिरोते हैं। अतः उनके शब्द दर्दो गम के झरने हैं, प्रेम की पीर की मुंह बोलती तस्वीरें हैं।